और परसाम सर्वशीलं ममशीलं सर्वपावनं मम पावनं सर्वकर्तव्ये मम कर्ता नानकलेपचेपनालप्यते मोकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा कराहे। सम्मान योग सात संगत जियो फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी कोई कर्म करता है तो किसी फल की इच्छा नु मुख रख के किसी भी कर्म नु फल ना लगे। ये गल इस तरह हुई कि जैसे बीजिया होया बीज प्रफुल्लत नहीं हो सकया, जैसे लाए हुए बूटे नु फल नहीं लग सके। तो माली नु बड़ी निराशा होंदी है जिस बूटे नू उसने सिंचिया होवे पालिया होवे पोसिया होवे खाद पाई होवे ते जिस वक्त फल देन दा वक्त आए ते वो सुक जाए तो थोड़ी नहीं बहुती निराशा होंदी। सो ये आपां जिहड़े रोज हुण कर्म कर रहे हां उठ के नितनेम करना है सतगुर दी शरण विच आना है इस दा फल की है। कलगीधर पातशाह ने जो कुछ लिखिया इस वक्त मैं वो थोड़े सामने रखा। दसम ग्रंथ दे अंदर कुछ सवाल ने और गालबन मेरे ख्याल 150 तो ज्यादा ने। एक एक सवाल बड़ा कीमती ते बहुत अहम है ते है गए अकाल उस्ताद दे च। उस दे विच धार्मिक पांडियां दे वो सारे प्रश्न आ जाने जिहड़े गाहे बगाहे अक्सर पैदा होंदे रहिंदे मनुखां दे अंदर। लेकिन आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा इना सवालां दे नाल जवाब लिखे हुए नहीं ने, सिर्फ सवाल ने जिन्हां ने कदी दसम ग्रंथ दे दर्शन कीते होवन। अवल ते साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्शन करन दा ही वक्त नहीं है ते थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर देईए। कईआं दे मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर क्यों नहीं दर्ज कीती। तो अक्सर जो मैं दो चार कारण संगतां दे सामने रखदा हुंना होए कि गुरु ग्रंथ साहिब दे निरोल ब्रह्म दी कथा ईश्वर दी, लेकिन दसम ग्रंथ दे च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना। तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वार्ता है। मेरा जन्म किथे होया कदों होया क्यों कर होया फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया फिर मैं किवें जंग लड़े ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित विचित्र नाटक दे च व्याख्या ये सारी गल इतिहासक हो जांदी है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू रिच कुछ खोज करोगे ते थानू लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी दा जन्म कदों होया कित्थों होया कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब रिच। ए निरोल ब्रह्म दी विचार एक ते इस ख्याल नू मद्दे नजर रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब रिच नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी। अक्सर अवतारी पुरुषां दी कथा दूजे तीजे पुरुषां ने लिखी है, जैसे राम दी जीवन कथा तुलसी ने लिखी है बाल्मीक ने लिखी है और इस तरह दे होर कुछ आलमा ने जैसे कि पंडित हिरदाराम वगैरह। श्री कृष्ण दी सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने कैसो दत्त ने इस तरह दे होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी, पातशाह ने आप क्यों लिखी? विचित्र नाटक दे ची ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नू सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहिंदे ने भावना भी चाहिए है और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वसो के लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होवेगा। ये कई संतां महंतां दी मैं जीवन कथा पढ़दा जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां होईयां ने, ये निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां विच भावना ते प्रबल सी ज्ञान दी कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल वी करामातां जोड़ दित्तियां। भावना प्रबल है पर जे निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जांदी। ये दोवां दा मिश्रत चाहिदा है। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग च आया है ते राम दे जीवन दे उत्ते ओ छंद ते चौपाइयां लिखण लगा है, उन्हें फिर राम नू साक्षात भगवान कह देता, अपना इष्ट कह देता। और हूबहू निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जद श्री कृष्ण दी जीवन कथा लिखदे ने ते ओ कृष्ण नू भगवान कहिंदे ने। साहिबां नू इस गल दा ख्याल सी, मता कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनू परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आत्मा नू ठेस पहुंचाण वाली गल होनी सी, लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अक्षर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उच्च रहे ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ, साफ गल कह दी। जो हमको परमेश्वर उच्च रहे ते सब नरक कुंड में पर है। मुको दास तवन का जानो, या मैं भेद नरंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमाशो। पिछले दिने इलस्ट्रेटेड वीकली विच सरदार खुशवंत सिंह जो एडिटर ने उसते, उन्होंने कुछ उन्हां पुरुषां दीआं फोटोआं ते जीवन झांकियां पेश कीतियां जिहड़े अज आप ही अपने मुंहों दावा कर देन भई असी भगवान। और इस तरह के 84 बंदे इस वक्त इंडिया दे हैं, 84। उन्हें लिखिया सी बई जीवन दे जाग दे 84 रब मौजूद ने, ते हुण भुलेखा ए पैंदा किनू मनीए, किस नू रब आखीए, क्योंकि सारे भगवान होण दा दावा पै कर देन। उहदे च बाल योगेश्वर भी सी, रजनीश भी सी, वह भी भगवान कहिंदा। और जिन्ना भगवान आखो ते औखे हुंदे ने, बड़े औखे हुंदे। साड़ी कौम विच भी चंद बंदे ऐसे हैं जो साफ कहिंदे ने असीं निरंकार हाँ, निरंकार ही आखो। ये निरंकारियां दी जिहड़ी लहर चली सी, वह कहिंदे सन सानूं निरंकार आखो, तो मूर्खां दा टोला पिछे चल पिया। ये भी नहीं सोचिया कि निरंकार दे अर्थ की ने। निरंकार दे अर्थ ने आकार तो रहत, जिहदा कोई आकार नहीं, ते जिहड़ा पंज तत्त दा पुतला बैठा किस तरह निरंकार होया। लेकिन अर्थां दे तह विच ना गए तो चल पै। 84 बंदियां दे चों गालबन 2-3 ते गुजर चुके ने, बाकी मौजूद ने जो दावा कर दें असी रब हाँ, असी भगवान हाँ, असी परमात्मा हाँ। ते एक एक बंदे ने लखां बंदे अपने पिछे लाए रहे। और गाहे बगाहे साडे विच भी बंदे खड़े हो जांदे ने, असी गुरु हाँ, असी संत हाँ, साडी रौरीती मनो, असी जिस ढंग दा तरीका दसीए ओ मनो। तो गुरुआं दी चलाई हुई प्रथा नूं तोड़न दी कोशिश करदे ने, गुरुआं नाल जोड़न दी कोशिश नहीं करदे। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाल अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनूं परमात्मा समझेगा कुंभी नरक विच जाएगा, जिहड़ा मैनूं रब आखेगा कुंभी नरक विच जाएगा। जो हमको परमेश्वर उच्च रहे ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो? मोको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो मैं हूं परम पुरख को दासो देखन आयो जगत तमाशो। मैं संसार का तमाशा वेखण वास्ते आया, उसका दास हाँ, उसका सेवक हाँ। और दरअसल आज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है, वो झूठा है। तो दसों गुरु साहबान ने कभी सानू नहीं आखिया भी साड़ी मूर्ति रख के साड़ी पूजा करो, असी रब किसी भी गुरु ने नहीं आखिया। हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की थी, उस शब्द दे नाल जिस दे च निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई नू सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई नू तस्लीम करन वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिदा है, बहुत विशाल दिमाग चाहिदा है। छोटे दिमाग दा बंदा, छोटे दिल दा बंदा सच्चाई नू ग्रहण कर नहीं सकदा, क्योंकि सच्चाई नू समझण विच ओ असमर्थ है। तो दसम ग्रंथ इस दी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी दे सामने रखांगा। बहुत सोहणे ख्याल जिंदगी दे हर पहलू दे ते धर्म दे हर नुक्ते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच उस बाणी नू दर्ज न करन दा दो कारण मैनू दिसदे ने। एक ते साहिबां दी अपनी कथा, दूसरा महाराज ने संस्कृत दे धर्म ग्रंथां दा टीका कीता, उलथा कीता। दसम ग्रंथ दा बहुत सारा हिस्सा ओ है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहिंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा कीता टीका कीता। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाय। भाखा कहिंदे ने टीके, ये जिहड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी दी जीवन कथा लिख रहा हां, आपनूं पता होवे दसम ग्रंथ दे च रामा अवतार कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां दी कथा भी है। ये अवतारां दी कथा सारी दी सारी संस्कृत दे च लिखी हुई सी, ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी भई संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण दा ही हक है, दूजे तीजे दा नहीं। तो आम लोकां नूं पता ही नहीं चलदा सी इन्हां धर्म ग्रंथां विच की है। पौंटा साहब विच बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत कीती है, उन्हां तमाम धर्म ग्रंथां दा उलथा कर छड़िया, टीका कर छड़े, ताकि लोगां नूं पता चले भई की है। और कई अज सियाणे पुरश हैरान हो जांदे ने भई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते बाल्मीक दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी दी भी है। जिथे भागवत पुराण लिखिया हुआ ऋषि वेद व्यास दा है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दा भी लिखा है। पर साहब साफ कहिंदे ने मेरे ख्याल नहीं दसम कथा भागवत की पाखा करी बना, ये मैं टीका कीता है, भाषा सरल कीता है, जो संस्कृत दे धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी दी जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहिंदे ने मैं ना गणेश है प्रथम मना हूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तन सो लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण दा नाम तो मैं सुनया पर मेरी कोई पहचान नहीं, ते ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश दा पुजारी नहीं, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਭਗਤ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਰਲੀ ਮਹਿਮਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਉਸ ਮੁਰਲੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉਸਨੇ ਛੰਦ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਛੰਦ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 24 ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਕ ਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਕ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਤਮ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਕ ਦੇ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5-10 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਤਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀਏ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 150, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਸੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਕੋ ਸਾਰ, ਕੋ ਦਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਕਵਨ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੂਰਮਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਸੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਕੋ ਸਾਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇੜੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਕੋ ਸਾਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਜੋਗ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੋ ਦਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਕਵਨ, ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹੋ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਰੋਗੀ ਰਾਗੀ ਕਵਨ ਕਹੋ ਤਤ ਮੋਹ ਤਵਨ, ਕੋ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 150-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਰੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੰਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਇਹ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਕੋ ਸੂਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਆਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਉ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭੈ ਕਾ ਹੋ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਔਰ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆ ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਮਸਤੀ ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੋ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਿਬੇਰੋ ਰਾਮ ਜੋ ਧੋਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿਉ ਕਾਮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਮਨ ਬੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਬੜਾ ਕਿ ਰਾਮੇ ਜਾਣਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਕਿ ਜਾਸ ਉਪਾਇਆ ਬੇਦ ਬੜਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਭਇਆ ਉਦਾਸ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਭਇਆ ਉਦਾਸ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਉਦਾਸ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਜਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ मन मनदा ही ओनू है, मन दे ते प्रभाव ही उसका पैंदा जिहड़ा मन तो वड्डा होवे। तो कबीर कहिंदे ने मन नहीं वड्डा, जिहदे नाल मन मन गया वह वड्डा। फिर राम नहीं वड्डा, रब नहीं वड्डा, रब नू जानन वाला वड्डा। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे, गाथा विच गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने सच जानो ईश्वर दी प्रीति दा कारण साधु ने। जे साधना करन वाले ना होन ते शायद ये पता ही ना चले कि रब है, ईश्वर है। वाल भी कहिंदा जब हम ही नहीं तो क्या रंगे महफिल, ऐ खुदा तेरी महफिल दा रंग साडे करके, जे असी नहीं तो महफिल ही कोई नहीं, गल ही खत्म। सारा चह चहाना सारी रौन साडे करके है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने साधुआं दे अनुभव तो, उन्हां दे जीवन दे ढंग तो पता चलदा, उन्हां दी मस्ती तो पता चलदा रब है। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारण है। तो कबीर कहिंदे ने नहीं, राम नहीं वड्डा, राम नू जानन वाला वड्डा। क्योंकि राम ते मौजूद है, उहदा पता ही नहीं चलदा, उहदा पता उस तो चलदा जिन्हें राम नू जाने, जिन्हें राम नू समझे। फिर मुख्तसर अर्ज करिए, कहत कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है या हरि दे दास वड्डे ने, कभी बगौर मुताला करके देखना। तीर्थ महात्मा लोगों नू नहीं पैदा कर दे, महात्मा ही तीर्थ नू पैदा कर दे। एक तलवंडी छोटे जिहा पिंड देच किसे महान रूह दा जन्म हो गया, तो ननकाना साहब बन गए। पहले कित्थे सी, पहले कोई तीरथ से, एक निका जिहा कस्बा से, एक निका जिहा पिंड से, पर अज वह तीरथ है। अयोध्या राम दे जन्म तो पहले भी से, पर किसने तीरथ मनिया उसनु, पर जदों राम दा जन्म हो गया अयोध्या अज तीरथ है। मथुरा कृष्ण दे जन्म तो पहले भी से, पर उसका जन्म होया तो मथुरा अज तीरथ बनी पई। किसे थां ते किसे महान पुरुष का जन्म होवे थां तीर्थ बन जाती है, किसे थां ते महान पुरुष अपने प्राणा का त्याग करे थां तीर्थ बन जाती। पवित्र होन चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब ने डोलिया ते सीसगंज गुरुद्वारा एक तीर्थ खड़ा, अज भी प्रेरणा देंदा। तो इस तीर्थ ने, इस थां ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं पैदा किया, ते गुरु तेग बहादुर साहब ने उस थां नूं जन्म दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने उस तीरथ नूं जन्म दिता। जिथे दरबार साहब बने, हरिमंदर साहब बने, थां ते पहले भी से। कदे इतिहास पढ़ो, इस थां नूं संघनी आबादी विच बदलन का ख्याल सब तो पहले गुरु अमरदास साहब जी दे हिरदे च आया। कम शुरू किया गुरु रामदास साहब जी ने और कम मुकम्मल किया गुरु अर्जन देव जी। ख्याल गुरु अमरदास साहब जी का, इत्थे संघनी आबादी का एक शहर वसाना, और गुरु रामदास साहब के टाइम ही काफी संघनी आबादी हो गई सी। वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, बड़ी संघनी आबादी। कल्पना गुरु अमरदास साहब जी की है, शुरुआत कीता है गुरु रामदास साहब जी ने, ते हरिमंदर साहब की उसारी करके मुकम्मल किया इसनों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो उत्थे बैठ के सतगुरां ने तप कीता, जप कीता, उसारी कीती है, ते अज समुचे संसार दा ओ वाहिद केंद्र है जिथे 24 घंटे रब दी उस्तति चलदी रहिंदी, परमात्मा दा नाम चलदा रहिंदा। इस तीरथ ने गुरुआं नूं जन्म दिता है, ते गुरुआं ने तीरथ नूं जन्म दिता।